नमस्ते।
आज का हमारा विषय है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत का अर्थ जो काम हम करते हैं उसके साथ फल का क्या रिलेशनशिप है, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है क्या वो सब हमारे कर्मों के कारण होता है अथवा वो ईश्वर की कृपा या ईश्वर का गुस्सा होता है या और क्या क्या कारण होते हैं, उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं संसार में बहुत लोग बहुत दुखी हैं, बहुत लोग बहुत सुखी हैं। बात इतने में होता तो समझ में आता, बहुत अच्छे लोग भी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं। बुरे लोग सुखी मिलते हैं, सुखी इन द सेंस ऊपर से सुखी दिखते हैं, बहुत धन है, मेहनत कम करते हैं, ऑनेस्टी कम रखते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग धनी होते हैं। हार्ड वर्क करने वाला ऑनेस्टली करने वाले बहुत सारे लोग गरीब भी मिलते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी विषमता देख के मन में फिर डाउट होता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग ईश्वर को गालियां देते हैं, बहुत लोग एथिस्ट भी बन जाते हैं कि ये ईश्वर तो शैतान से बदतर है, देखो छोटे बच्चों को कितना तकलीफ देता है, देखो कोरोना ले आया ईश्वर ने और क्या क्या तकलीफ देता है। कुछ लोग कहते हैं जी ईश्वर ने कोरोना लाया जो हमारे रिलीजन को नहीं मानते उनको सजा देने के लिए। बहुत सारे लोग ये बताते हैं आप ईश्वर को ना मानो तो ईश्वर आपको दुख देगा, कष्ट देगा, आप कष्ट भोग रहे हो क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मानते हो, इसका मतलब ईश्वर गुस्सा कर रहा है, कोप कर रहा है, नाराज हो रहा है, इसीलिए हमारे जीवन में इस तरह के परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर के जगह डेस्टिनी को, भाग्य को कोसते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो डेस्टिनी की बात है, भाग्य की बात है। और मजेदार बात है, बहुत सारे लोग तो शनि राहु केतु को दोष देते, ये बेचारे ग्रह नक्षत्रों को जिनमें जान नहीं है, वो अपना अपना काम करते यूनिवर्स में। जी शनि नाराज है, केतु शोक भवन में है, चंद्रमा रूठी हुई है, सूरज परेशान है, इसीलिए ये सब हो रहा है। जी जो अच्छा हो रहा है, जी शनि प्रसन्न है, प्रसन्न रखो। तो हम ग्रह नक्षत्रों को भी रिस्पॉन्सिबल मान जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, दुनिया में ऐसी समस्याएं क्यों हैं। इन सब का जो आंसर है हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बड़े डिटेल में डिस्कशन किया है। इन चीजों का ऑब्जर्वेशन करके ईश्वरीय ज्ञान के प्रभाव से, अपने टैलेंट के प्रभाव से, इन चीजों के बेस पर जो कंक्लूजन निकाला, उसी थ्योरी को, उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है उसमें अपने कर्मों का ही सबसे बड़ा योगदान है। पर ऐसा तो हम देखने को नहीं पाते, अच्छा कर रहा है तो बुरा फल मिल रहा है, बुरा कर रहा है तो अच्छा फल मिल रहा है, फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है? तो फिर हमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, वो कर्म क्या है, कैसे फंक्शन करता है। संस्कृत में एक श्लोक है, न भोक्तम खीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम कुछ भी करो उसका फल तुम्हें मिलता है, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, कुछ भी करते हो, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। वो फल तुम्हें आज मिले, कल मिले, दो दिन के बाद मिले, दो साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, या दो जन्मों के बाद मिले, या 2,00,000,000 जन्मों के बाद मिले। कोई भी कर्म फल दिए बिना बेकार नहीं जाता है, आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। पर कैसे? कर्मों के फल देने के आधार पर हमारे शास्त्रों में कर्मों को तीन तरह से क्लासिफाई किया है। कुछ कर्म हमें अभी अभी फल दे देते हैं, जो काम किया तुरंत मिल गया। कुछ कर्म फल अभी नहीं मिलता तो इसका अर्थ है कि बेकार तो नहीं जाएगा, वो कभी बाद में मिलेगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। और कुछ कर्म हमने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे तब भी मिल रहा है, अच्छा नहीं कर रहे तो अच्छा मिल रहा है, बुरा नहीं कर रहे तो भी बुरा हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जो पहले के किए हुए कर्म उसका फल अभी मिलने लग गया है। तो जो कर्म सिद्धांत है उसकी बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। हर काम का कोई ना कोई रिजल्ट है, वो इमीडिएटली हो या फ्यूचर में हो, ये उस रिलेशनशिप पर बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट। कर्म और कर्म का फल के बीच में दूरी मैटर नहीं करता है। आपने इंडिया में किया हो वो कर्म, हो सकता है आपको अफ्रीका में फल मिले, हो सकता है आपने अपने घर में कर्म किया हो फल आपको ऑफिस में मिले, दूरी मैटर नहीं करता कर्म और फल के बीच में। नंबर टू, टाइम। जरूरी नहीं कि जिस टाइम पर किया उसी टाइम पर फल मिले, टाइम का भी डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है आपको एक ही मिनट में फल मिले या 1000 सालों के बाद या 1000 जन्मों के बाद मिले, इट्स अ बिग डिस्टेंस, पर कभी भी मिल सकता है। क्योंकि हम काम करके भूल जाते हैं, इसीलिए हम मान बैठे कि नहीं है मैंने नहीं किया। अब ये गलत बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो याद नहीं मैंने कब किया। तुम्हें कब याद है कि तुम 4 साल पहले मंडे के दिन 4 तारीख के दिन क्या खाया था? तुम्हें तो ये भी नहीं पता बचपन में तुम कौन से दिन पहली बार मां बोलना सीखा। तुम्हें यह भी नहीं 5 साल पहले जनवरी 6 तारीख को कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया था। क्योंकि तुम्हारी मेमोरी कमजोर है या तुम्हें याद नहीं रहता है, इसका अर्थ नहीं है कि कोई चीज घटता नहीं है। ज्यादातर लोगों की समस्या है कि अगर कर्म का फल है अभी तो हमने किया नहीं, कब किया था हमें याद नहीं, तो फिर हम क्यों माने। बात तुम्हारी मानने ना मानने की नहीं है। तुम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मानते हो नहीं मानते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरेगा। तुम कहोगे नहीं ये तो वैसे ही होता है, रैंडमली होता है, ईश्वर के कारण होता है या मेरे भाग्य के कारण होता है, ऐसे ही होता है, बस मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मानना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। पर पत्थर ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, उसमें आपके सर पर भी गिर सकता है। नेचर के जो लॉज होते हैं उसको हम मानते नहीं मानते वो हमारी प्रॉब्लम है। जो मानते हैं हम उनको कोई अच्छा क्रेडिट देना चाहते हैं ऐसी बात भी नहीं है। मतलब आप बिलीव करते हो बिलीव नहीं करते हो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपके बिलीफ सिस्टम पर नहीं चलता, बिलीफ सिस्टम पर सिर्फ रिलीजन चलते हैं। रियलिटी तो अपने अपने हिसाब से चलता है। मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। हां अगर आप समझ गए, अगर आप चीजों को समझते हैं तो जरूर फर्क पड़ता है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगा। आपको पता चला कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा ठंड में घूमते हैं तो बीमार पड़ते हैं, आप ठंडा पानी पीते हैं तो बीमार पड़ते हैं। कॉज और इफेक्ट को आप ठीक ठीक समझ गए तो आपके पास अब चांस है कि जो ज्ञान आपको मिला, जो समझदारी बनी, उसके बेस पर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। हो सकता है आपको कभी फ्लू ना हो, आपको एलर्जी ना हो, समझने के बाद भी अगर आप ढीला पड़ते, इट्स अप टू यू। तो समझने का फायदा तो है, पर मानना ना मानने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जी हम मानते हैं कर्म सिद्धांत, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, ना मानो। जी भूख लगता है, हम नहीं मानते कि भूख ना भूख लगता है, मत मानो, पर जो भूख लगता है तो खाना जरूर खा लेना। कर्मों का फल मिलता है ये निश्चित है, कब मिलता है उसका अपनी अपना मैकेनिज्म है, उसको हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज ये कि आप कोई कर्म करते तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, आप भूखा हो प्यासा हो, दिन भर मेहनत करके घर वापस आते हो, कुछ भी खाना मिल गया, रोटी सब्जी दाल चावल अपने खा लिया तो पेट को आराम मिला, आपका भूख मिट जाता है, तो आपने इंस्टेंटली फील किया कि इसका रिजल्ट मुझे मिला। आपने किसी को थप्पड़ मारा, भाई साहब ने दो थप्पड़ आपको लगा दिया, रिजल्ट मिल गया, ये इंस्टेंट रिजल्ट है। आपने किसी को मुस्कुराया, देख के हंसा, पूछा आप कैसे नमस्ते, उसने भी मुस्कुराया, नमस्ते बोला और अंदर से खुश हुआ, आपको भी बोला आप कैसे हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, रिजल्ट मिला, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो जो हमने किया और इंस्टेंटली मिला वो इंस्टेंट रिजल्ट है, पर कुछ काम हम करते अभी मिलता नहीं है। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने जवाब में कुछ नहीं दिया, आपको लगता होगा मैंने तो थप्पड़ मारा, सामने वाले ने दो चार पांच क्यों नहीं मारा, एक तो मार लेता, क्यों नहीं किया, आपने बुरा किया अच्छा किया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो कर्म ऐसे कर्म है जिसका रिजल्ट अभी मिलने का चांस नहीं है। हर पेड़ एक तरह का फल नहीं देता है, कुछ पेड़ होते हैं 6 महीने में फल दे देते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो 2-4-5 साल तक वेट करना पड़ता है उनके फल आने में, ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जो 15-20 दिन महीने भर में फल दे जाते हैं। कर्म इसी तरह के, अलग अलग टाइम पर हर कर्म का अपना एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, कौन सा कर्म कैसा फल देगा उसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बेस पर डिपेंड करता है कि मुझे अपने कर्मों का फल अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब कर्म का फल नहीं मिला वो बेकार नहीं गए, वो जमा हुआ आपके स्टोर में, आजकल की भाषा में आपके सेविंग अकाउंट में जमा हुआ, कभी मिलेगा जब जरूरत पड़ेगी, जब ऐसी व्यवस्था होगी मिलेगी, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं। ईश्वर को पता है कि कब आपकी जरूरत है देने के लिए, वो तब देगा। ईश्वर कर्म फल दाता है, वो जस्टिस है, रैंडमली नहीं करता, अपनी इच्छा से नहीं करता। ये जो कर्म सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बेस पर, जैसे आपके ह्यूमन सोसाइटी में जो जजेस होते हैं वो अपने मर्जी से आपको सजा नहीं देते, रूल्स हैं, लॉज हैं, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के बेस पर बस वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी विजडम के हिसाब से। एक तीसरा है कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं घर में बैठा हुआ हूं, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया, मैं सारा अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है, और ये आदमी सब बुरा काम कर रहा है, पर देखो कितना बड़ा घर है, कितनी गाड़ियां हैं, पब्लिक में कितना उसका रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में कितना आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी उन्नति कर रहा है, और मैं रुका पड़ा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपके काम किए बिना कुछ मिल रहा है, जो किया वो नहीं मिल रहा है, जो नहीं किया वो मिल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जो कर्म है उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया, क्रियमाण कर्म, वो कर्म जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, संचित कर्म जिन कर्मों को किया पर उसका फल नहीं मिल रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है और कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, हमारे सेविंग अकाउंट में जमा हो रहा है। और प्रारब्ध वो जो जमा हुआ संचित कर्म है जो हमने कभी किया था और जमा करके भूल गए, हमने फिक्स डिपॉजिट रखा था, इंश्योरेंस लिया था या किसी और तरह के हमने 10 साल 15 साल के लिए पैसे को कहीं जमा कर दिया था, लाइफ में बिजी हो गए, कुछ लोग भूल गए कुछ लोग नहीं भूले, और उसकी मैच्योरिटी डेट आ गया तो आपके घर में चेक आ जाता है। अगर आप भूल गए सडनली चेक देखते लाखों का चेक है तो आप खुशी से उछल पड़ते हैं, देखो मुझे मैं तो भूल गया था, ये मुझे चेक मिल गया अचानक जरूरत थी। किसी को याद है मिलता है तो भी ये खुश है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। पर प्रॉब्लम है कि सेविंग अकाउंट में या इंश्योरेंस में तो पैसा आता है और ये कर्मों की अकाउंट में अच्छा बुरा हर तरह का रिजल्ट आता है, हर तरह के फल आता है। कर्म थ्योरी में एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है और वो मिसपरसेप्शन है कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल, बुरा कर्म करने से बुरा फल। तो हम कर्म फल की जब बात करते हैं सिर्फ अच्छा और बुरा समझ के बात करते हैं, पर ये गलत परसेप्शन है। कर्म सिद्धांत का अर्थ है हर कर्म का फल है, कर्म अच्छा या बुरा की बात नहीं है। आप खाना खा रहे हो उसका भी एक फल मिलेगा, खाना खाना अच्छा या बुरा वो सेकंड बात है। आप चल रहे हो उसका भी फल है, बैठने का भी बैठना भी कर्म है उसका भी फल है, देख रहे हो उसका भी फल है, सुन रहे हो उसका भी फल है, हर कर्म का फल है। कर्म हमेशा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है, उसमें लाखों कर्म ऐसे हैं जो हम रोज करते हैं जो व्हाइट और ब्लैक में काउंट नहीं होते हैं। व्हाइट मतलब अच्छा, ब्लैक मतलब बुरा, वो ग्रे कलर में काउंट होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता इसका कौन सा कलर है ठीक ठाक, ये लाल है पीला है व्हाइट है ब्लैक है कुछ नहीं पता लगता, पर उनका फल मिलता है। आप खाना खाते हो, कैसा खाना खाते हो, आप तले हुए खाना खाते हो, मिर्च वाला खाना खाते हो, हेवी खाते हो, बार बार खाते हो, और जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करते नहीं हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो, 15-20 साल के बाद वैसे तो धीरे धीरे आप शरीर भी बन रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, डायबिटीज आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की बीमारियां आती है, डॉक्टर ने कहा कि आप को खाना पीना ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। खाना पीना लाइफस्टाइल एक दिन में तो नहीं हो गया ना, जो 5 साल 10 साल 2 साल की जो आपने एफर्ट किया था उस समय तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लाओ जी पिज्जा खाने दो, रोज कराओ, रोज समोसा खाओ 4 बजे, किसी ने बोला कि इतना हेवी हेवी खाना खाते हो कैसे डाइजेस्ट, चिंता मत करो कुछ नहीं हो रहा है मुझे, मतलब इंस्टेंटली कुछ नहीं हो रहा है तो उसको लगा कुछ नहीं होगा। 5 साल के बाद हुआ, 10 साल के बाद हुआ, जब हो गया अब बोलता है देखो क्या करूं, किस्मत खराब था, भाग्य में लिखा हुआ था। खाना खराब है कि अच्छा है? खाना ना अच्छा है ना खराब है। जब आप बीमार पड़ते हो तड़पते हो लोग क्या इसका अर्थ लगाते हैं कि इसने कोई बुरा काम किया होगा इसीलिए दुख भोग रहा है। बुरा काम का अर्थ है कि आपने किसी को परेशान किया होगा, टर्चर किया होगा, लूटा होगा, कुछ किया होगा, ये गलत परसेप्शन है। कर्म कैसा है भी हो किसी के साथ भी करता है उसका फल मिलता है, खाना खाते समय आप किसी का तो नुकसान नहीं किया ना, ना आपने वर्बली किसी का नुकसान किया, ना मेंटली किया, कुछ भी नहीं किया। आप बस खाना खाए। खाना एक कर्म है, जिस कर्म को जैसा करना था आपने ऐसा नहीं किया, उसे ज्यादा किया, उसे कम किया, इसीलिए उसका फल मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है, गर्दन की, आंखों की, क्योंकि ये पर्टिकुलर वे में बैठते हैं, कमर की, स्पाइन की, या पर्टिकुलर वे में सोते हैं। सोना और बैठना, आप कहोगे इसमें मेरा कर्म कहां से आ गया जी, मैंने तो कभी, मैं तो पूरी जिंदगी बड़ा ऑनेस्ट रहा, अच्छा आदमी रहा, किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ही साथ क्यों हुआ? क्योंकि हम, हमारे अंदर ये परसेप्शन है, और ये झूठ परसेप्शन, कि दूसरों के साथ कुछ भला बुरा करने पर ही होता है वही कर्म फल है। नहीं, जो आपकी नेक की प्रॉब्लम हुई, आंखों की प्रॉब्लम हुई, या जो प्रॉब्लम हुई आपके बैठने के तरीके से या लेटने के तरीके से, वो बैठना और लेटना कर्म है। उस कर्म को जैसा करना चाहिए स्पाइन को ठीक रखने के लिए, गर्दन को ठीक रखने के लिए, आप अगर ऐसा नहीं बैठते हो, नहीं सोते हो, तो बीमारी होगी। वो कर्म फल किसी को नुकसान पहुंचाया या खराब किया उसके कारण नहीं, जो करना चाहिए जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया, वो नहीं किया, इसीलिए फल है। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए, कर्मों के मामले में अच्छा और बुरा का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चोरी की, नारी की, बेईमानी की, दूसरों के साथ खराब व्यवहार किया तभी अच्छा या बुरा है। जो काम जैसा करना चाहिए उसको वैसा ना करना से रिजल्ट उल्टा पड़ता है। हर कर्म का फल मिलता है, मतलब बैठने का भी फल होता है, कैसे बैठते हैं उसका भी फल होता है, कब बैठते हैं उसका भी फल पर इंपैक्ट पड़ता है, कितने देर तक बैठते हैं उसका भी फल पर इंपैक्ट पड़ता है, कहां बैठते हैं उसका भी फल पर इंपैक्ट पड़ता है। आप अंधेरे में गए, एक जगह बैठ गए, देखा वहां बहुत सारे कांटे थे, कांटों के ऊपर बैठ गए तो कांटे चुभ गए, तो कांटे चुभ गए तो आप कहेंगे देखो मेरे भाग्य में क्या था, मैंने तो किसी की बुरा नहीं किया था। वे किसी का बुरा करने की बात नहीं, कांटों के ऊपर बैठे, यही कर्म है और ये इसी का फल है। इसका मतलब जो लोग अच्छे लोग हैं पर उनके लाइफ में दुख है और वो मानते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं पर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा आदमी का मतलब वो समझता है मैंने किसी दूसरे का बुरा नहीं किया, और पब्लिक इसी तरह समझती है। पर जो चीजें वो ध्यान नहीं दे रहा है कि तुमने अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखी, ये ठीक है कि तुमने लाइफ में एक मक्खी भी नहीं मारी, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को गंदा नहीं कहा, ना किसी के बारे में गंदा सोचा भी, पर अगर तुम 24 घंटे लेटे रहते हो, 12 घंटे टीवी देखते हो, खाना उठपटांग खाते हो, फल उसका मिल रहा है, ये बुरा कर्म है। इसीलिए कभी कोई आदमी दुख भोग रहा हो तो मत जज करिएगा, आप में वो क्षमता, वो एबिलिटी नहीं है किसी आदमी को जज करने के लिए, ये सो कॉल्ड कर्म थ्योरी लगा के उसने कुछ बुरा किया होगा तो भोग रहा है, या किसी के लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो वो बड़ा अच्छा आदमी होगा, इसीलिए ये बहुत मिस जजमेंट है, और वैसा जजमेंट जो बहुत इग्नोरेंस पर टिका हुआ है, और इससे बहुत लोगों को चोट पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। कर्म सिद्धांतों के बारे में ना जानने वाले, हल्की फुल्की जानने वाले लोगों ने कर्म सिद्धांत को बहुत बदनाम किया, किसी को भी जज कर बैठते हैं। आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों के कारण, वो कर्म दूसरों के साथ क्या किया नहीं किया मैं जरूरी नहीं है, आप अपने साथ क्या करते हो वो भी मैटर कर। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कैसे एक कर्म का जब फल मिलता है उसमें कितने सारे और फैक्टर्स होते हैं, वो सब हमारे से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस, एबिलिटी, ट्रेनिंग, स्किल, प्रॉपर रिसोर्सेस, प्रॉपर एफर्ट्स, ये सब चीजें मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कर्म और फल के रिश्ते में अच्छा बुरे का मतलब नहीं है, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक से बैठा नहीं तो ठीक से ना बैठने का रिजल्ट मिलेगा। आपने किसी को मारा नहीं मारा उससे आप बीमार नहीं पड़ते हो, उससे आपकी आपका बिजनेस नहीं चलता वो इसीलिए नहीं है कि आपने किसी का नुकसान किया था। बिजनेस नहीं चलता तो बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ चाहिए उनमें से कोई एक भी कमी है तो बिजनेस नहीं चलेगा, उसमें ना डेस्टिनी है ना ईश्वर का गुस्सा है, कुछ भी नहीं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, संचित कर्म। ये संचित कर्म कैसे काम करता है? कोई भी काम आप करते हैं और उसका रिजल्ट मिल गया तो बात खत्म नहीं हुई भाई। आपने सोचा आप एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, पैसा दिया, बात खत्म, आकर सो गए? नहीं, कर्म के संसार में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, पहली बार एक डिश आपने ट्राई किया, खाना खाने के बाद खाने का जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है आपको स्वाद अच्छा बुरा जो भी लगने लगा पेट में गया, जितना दिन लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में, ब्लड बनने में, एनर्जी बनने में या कोलेस्ट्रॉल बनने में, फैट बनने में, अच्छा बुरा जो भी जो अभी आपने डिस्कस किया वो अच्छा बुरा सब रिजल्ट उसका आपको मिल गया। ये सब किसी भी कर्म का प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल डायरेक्ट रिजल्ट जो हम खुद देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। पर हर कर्म का वो क्रियमाण हो, ऐसा कर्म जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हो वो हो, ऐसा कर्म जो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिला मतलब संचित हो, कोई भी कर्म हो उसका एक इनविजिबल रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हर कर्म का अंदर से और एक रिजल्ट बन रहा होता है। वो क्या है? आपने पहली बार पास्ता ट्राई किया, जब भी लाइफ में ट्राई किया होगा कभी ना कभी तो आपने पहली बार खाया होगा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक ठीक लगा, बात खत्म नहीं हुई। वो पास्ता खाने का और पास्ते का जो स्वाद है, अच्छा बुरा अवरेज जो भी, उसका एक मेमोरी बना आपके माइंड में, स्मृति। और वो स्मृति ग्रेजुअली बिकम्स द सबकॉन्शियस मेमोरी, मतलब आप भूल गए हैं पर वो आपकी सबकॉन्शियस में बना रहा, उसको कहते हैं संस्कार। ये पूरा जो कर्म और फल का जो सिस्टम है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है वो होता है संस्कार। वो संस्कार से कंफ्यूज्ड मत होइए। एक संस्कार तो जो छोटा सा संस्कार होता है जात कर्म उपनयन, वो अलग चीज है। ये संस्कार का मतलब होता है इंप्रेशंस, इम्प्रिंट्स। आप कहीं चले गए, चलते गए, रेत में आप चलते तो रेत में आपके पैर का चिन्ह निशान रह जाता है। ये जो निशान पीछे रह जाता है कहां? आपके मन में, उसी को कहते हैं संस्कार। वो संस्कार क्या करता है? आपने पहली बार पास्ता खाया, आपके मन में एक मेमोरी गई, आपको पता ही नहीं चला, आप तो ऊपर ऊपर रहे, स्वाद अच्छा लगा बुरा लगा, अगर अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम फिर आपका मन करेगा वही पास्ता खाएं, उसी दुकान में जाएं, वो रेस्टोरेंट नहीं मिला तो किसी और रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे। नहीं मिला तो वेट करेंगे, जब भी मौका मिले आप दोबारा वो पास्ता खाना चाहेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो जहां जहां पास्ता मिल रहा होगा आपका मन खराब होगा, यू विल डिसलाइक इट, राग एंड द्वेष पैदा होने लगता है। अगर अच्छा लगा आप बार बार खाने की कोशिश करेंगे, अच्छा नहीं लगा आप बार बार उसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। हम मान के चलते हैं आपको अच्छा लगा, आपने दोबारा खाया, कभी बात खत्म नहीं हुई, सब कॉन्शियस मेमोरी और स्ट्रांग हुआ, एक मेमोरी थी उसके ऊपर दूसरी मेमोरी, तीन बार खाया, चार बार खाया, आप धीरे धीरे आपकी मेमोरी संस्कार दृढ़ होते गए, स्ट्रांग होते गए, स्ट्रांग होते गए। और एक दिन ऐसा आया कि आप पास्ता रोज खाने लगे, या हफ्ते में चार दिन खाने लगे, या तीन दिन खाने लगे, अब ये आदत पड़ गया, नेचर में कन्वर्ट हो गया। नाउ द सेम संस्कार becomes part of your life. अब आपको रोज पास्ता खाना होता है, या हफ्ते में पांच दिन, चार दिन, तीन दिन खाने लग गए, या एक दिन खाने लग गए, महीने में एक दिन, वो पैटर्न बन गया। इसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। तो मैं जैसा भी हूं, आप जैसा भी हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जिस तरह आप रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर, जो आपके पसंद या नापसंद है, वो सब आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये आपके बैकग्राउंड में वो सबकॉन्शियस मेमोरी से, माइंड का जो सबकॉन्शियस लेवल है, उस लेवल से कंट्रोल हो रहे हैं। वो संस्कार इतना मजबूत हो जाता है, आपकी लाइक डिसलाइक करना ना करने को डिसाइड वो करता है। कोई भी इंसिडेंट होता है, आपका जो पहला रिएक्शन है, आप सोचते हैं कि ये तो मेरी मर्जी से आया, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा तो मैं क्या करूं। नहीं, वो अच्छा लगना ना लगना, जिस तरह के भी रिएक्शन आया, वो आपके उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर होता है। तो मतलब आज जिस तरह आप भाषाएं बोलते हैं, आप जिस तरह चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, समझ लीजिए अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको सुन करके जो आपके मन में जो भी रिएक्शन आ रहा होता है, वो सब आपका उन संस्कारों के बेस पर होता है। इसलिए हर कर्म का अलग अलग रिएक्शन मिलता है जी। 50 लोग सुन रहे हैं, 50 लोगों का रिएक्शन अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का दुनिया में आने के बाद एक्सपीरियंस अलग अलग तरह से हुआ। इसी को कहते हैं संस्कार। कोई भी काम हम करते हैं, वो जो संस्कार है, इंप्रेशंस है, वो आपके कॉन्शियस में चले जाता है और वो डोरमेंट स्टेट में रहता है, बिल्कुल इनएक्टिव मोड में पड़ा रहता है। और रोज आपके हजारों संस्कार बनते हैं, संस्कार इकट्ठा हो करके न केवल आपके इस जीवन में आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, आपके हजारों हजारों जन्म के को भी ये इफेक्ट करते हैं। ये फिर काम में कैसे आते हैं? ये संस्कार पड़ा रहता है आपके अंदर, जैसे ही उसको कोई सुइटेबल स्टिमुलेंट मिलता है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम मिलता है, वो एक्टिव होने लगते हैं। घरों में जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, किसी माँ बाप के मान लीजिए दो बच्चे हैं या तीन या चार बच्चे हैं, हम चार लेकर चलते हैं, चारों बच्चों के में आपको टैलेंट अलग अलग मिलेगा, अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट मिलेगा, अलग अलग तरह का उनका सोच होगा, समझदारी होगी, वो दुनिया के साथ जो उनका रिएक्शन है, दुनिया में जो भी इंसिडेंट होता है वो अलग अलग होता है। क्यों एक बच्चा मैथमेटिक्स में इतना अच्छा है और उसी का एक भाई या बहन बिल्कुल मैथ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो गाना गाना पसंद करता है या करती है? क्यों कोई तीसरा है जिसको खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है? एक भाई या बहन है जो बहुत शांत है, सीधा है, भोला है, और दूसरा बड़ा चंट है, बहुत कनिंग है, बहुत स्मार्ट है। किसने सिखाया? माँ बाप तो एक ही है, स्कूल तो एक ही है, ट्रेनिंग तो एक ही है, घर तो एक ही है, खाना पीना तो एक ही है, किसने सिखाया? हजारों जन्म जन्मांतरों से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अगले जन्मों में भी हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा कुछ मत करो नोइंगली अननोइंगली, तुम्हें तो लगेगा कुछ नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, पर ये सब तुम्हारे पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगे। इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में क्या पता कि हम शेर भालू गधा होकर पैदा होंगे, इंसान होंगे भी तो क्या पता, हम जो बुरे कर्म करते रहे छुपा के, जो भी पब्लिक को तो पता नहीं चला, पर वो हमारा सबकॉन्शियस को इफेक्ट करता है, पर्सनालिटी को इसी हिसाब से वो चेंज करता रहता है। अब इसको इस चार्ट से समझने की कोशिश करिएगा। आप कोई काम करते हैं, उस काम से आपको कोई अच्छा बुरा जो भी एक फीलिंग होती है, पेन या प्लेजर या बीच का जो भी आपको मिलता है, बात खत्म नहीं होती है, वो धीरे धीरे आपके मेमोरी में चला जाता है और मेमोरी धीरे धीरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चला जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। और वही संस्कार आपकी धीरे धीरे टेंडेंसी में चेंज हो जाता है वासना के रूप में। आप उस पर्टिकुलर चीज को देख करके या जान करके उसके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं या अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, उस चीज को पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो वासना बनती है। वो टेंडेंसी धीरे धीरे जब स्ट्रांग होने लगती है फिर वो आपकी थॉट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, चित्त वृत्ति। मीन्स आपके सोच में समझ में वही चीजें बार बार रिपीटेडली आता रहता है, और वो चीजें जो माइंड में आपके माइंड को कंट्रोल करने लगता है, थॉट प्रोसेस ही माइंड को कंट्रोल करता है, फिर आप उसी तरह के चीजों को करने लगते हैं या नहीं करने लगते हैं। फिर क्योंकि आप उसी तरह के चीजें करने लगते हैं फिर एक्शन बन जाता है, फिर एक्शन सबकॉन्शियस मेमोरी संस्कार, फिर संस्कार से वासना, वासना से वृत्ति, फिर वृत्ति से कर्म, फिर आप उस कर्म के साइकिल में ट्रैप्ड होते जाते हैं। मुक्ति का कोई उपाय नहीं, फिर आप कर्म कुछ किया उसका संस्कार, संस्कार से वासना, वासना से वृत्ति, वृत्ति से फिर कर्म, आपकी लाइफ उसी में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। छुटेगा कब? जब आप फिजिकली कर्मों पर कंट्रोल करें। इसीलिए हमारे आध्यात्मिकता में कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करो, बात नहीं बनेगी इतने में। संस्कार पर भी कंट्रोल लाना जरूरी है। असंस्कार कहां होता है? माइंड के लेवल पर। तो मन को कंट्रोल करो, तो कर लेने से संस्कार मिट जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस तरह के संचित कर्म हमारे लाइफ में इफेक्ट डालते रहते हैं, अच्छा या बुरा, अपने नोइंगली किया अननोइंगली किया, वो हमारे लाइफ में इसका इंपैक्ट पड़ता रहता है। जो भी कर्म हम करते हैं और उसका जो रिजल्ट अक्यूमुलेटेड होता है, जिसको हम सबकॉन्शियस मेमोरी इम्प्रिंट्स और संस्कार कहते हैं, वो जो संस्कार संचित कर्म, वो तीन तरह से हमें रिजल्ट देता है। जाति अर्थात क्लास ऑफ बर्थ, किस तरह का जन्म हमें मिलेगा। आयु, जो जन्म मिलेगा हमारा आयु कितना होगा, लाइफ स्पैन कितनी होगी। भोग, किस तरह के चीजों को हम एक्सपीरियंस करेंगे। जाति से हिंदी वाली जाति मत समझ लीजिएगा कि ये अमुक जात में पैदा होगा। जाति का अर्थ होता है जन्म, मतलब मैं कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, शेर बनूंगा, इंसान बनूंगा, कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, प्लांट्स बनूंगा, ये जन्म है। किस तरह के शरीर मुझे मिलेगा मरने के बाद, ये जन्म वाला मरने के बाद मिलता है। संचित कर्मों से ये जो संस्कार इकट्ठा हुआ, जिस तरह के चीजें आप सोचते हैं मानते हैं उसी तरह का जन्म मिलेगा। अगला है आयु, 60 साल, 50 साल, 20 साल, 2 साल, आधा ये आधा साल, सौ साल, 150 साल, कितना आयु होगा, ये भी हमारे कर्मों से निर्धारित होता है और बेसिकली संचित कर्मों से, इंस्टेंट कर्मों से भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है किसी भी कर्म का, वो दो तरह का होता है, हमारा आयु पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे भोग, भोग मतलब एक्सपीरियंस, सुख दुख, अच्छा बुरा क्या भोगेगा। कोई भी आप काम करते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम मर जाते हैं, हो सकता है हमारा लाइफ 100 साल का था पर एक्सीडेंट के कारण 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में गुजर गए। कोई ऐसी बीमारी हुई जो 100 साल की आयु था वो कम हो गया। तो कर्मों का इंस्टेंट रिजल्ट से आयु पर भी फर्क पड़ता है, क्रियमाण कर्म से, और भोग पर भी, भोग किस तरह का, सुख भोग रहा हूं, दुख भोग रहा हूं, अच्छा बुरा। संचित कर्मों से तीनों फल मिलते हैं, जो एक्यूमुलेटेड है हमारा रिजल्ट, संस्कार, वो संस्कार से ये तो डिसाइडेड होगा कि मैं अभी मेरा आयु कितना है, कम होगा ज्यादा होगा। अगर मेरा पास्ट अच्छा नहीं रहा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं रही, या अभी मेरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो नेचुरली आगे मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। लाइफस्टाइल अच्छी है, बहुत ध्यान रख रहा हूं, खान पान ठीक रखता हूं, शरीर का ध्यान रखता हूं, मन को शांत रखता हूं, तो हो सकता है मैं पहले से 60 साल की जिंदगी लेकर आया हूं, पर मैं अभी के अच्छे कर्मों से मैं अपने फ्यूचर को लंबा कर सकता हूं, 60 के जगह 80 जी सकता हूं। वो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो संचित से आयु का भी फर्क पड़ता है और भोग, मैं जैसा भी हूं, गरीब घर में पैदा हुआ, धनी घर में पैदा हुआ, ज्ञानी घर में पैदा हुआ, ज्ञानी घर में पैदा हुआ, किसी पर्टिकुलर देश में पैदा हुआ, किसी पर्टिकुलर गांव में पैदा हुआ या शहर में पैदा हुआ, इससे फर्क पड़ता है ना, मैं किस तरह के चीजों का एक्सपीरियंस करूंगा, सुख भोगूंगा या दुख भोगूंगा, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, मुझे कितनी मार पड़ता है या नहीं पड़ता है, कितना प्यार मिलता है या नहीं मिलता है, मेरे घर का एटमोस्फियर क्या है, कैसा है, ये एक्सपीरियंस के लिए हेल्प करते हैं। अतीत, ये तीन चीजें संचित कर्मों से मिलता है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं कि हर आदमी एक ही टाइप का काम करे तो सबको एक ही टाइप का रिजल्ट मिले, ये डिपेंड करता है बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर। 10 लोगों ने एक ही तरह के गलत काम किया, 10 का रिजल्ट अलग होगा, 10 लोगों ने एक ही तरह का अच्छा काम किया, 10 का रिजल्ट अलग होगा, डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है। उस अच्छा या बुरा काम को करते समय आपका इंटेंशन कैसा था, मोटिव कैसा था, मोटिव की इंटेंसिटी कितनी थी, जो आपने किया उसमें कितना फोर्स था, फोर्स की इंटेंसिटी कितनी थी, क्या टाइमिंग था, क्या प्लेस था, किसके साथ किया, बहुत सारे फैक्टर्स से फर्क पड़ता है कि आपको उसका कर्म का फल कितना मिलेगा, बराबर नहीं मिलने वाला। और यहीं पर लोग गलत परसेप्शन बनाते हैं कि मैं भी अच्छा, वो भी अच्छा, उसको अच्छा मिला मुझे क्यों खराब मिला, मैं भी बुरा, वो भी बुरा, उसको फल नहीं मिला मुझे क्यों नहीं मिला, बुरा बुरा, अच्छा अच्छा, अपने ऊपर ऊपर सुपरफिशियली देखा, अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ये संचित कर्म और प्रारब्ध, जो तीसरा जो स्वरूप है प्रारब्ध, ये दोनों कैसे हमारे न केवल इस जीवन में इफेक्ट डालते हैं, अगले जन्म में भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये पुनर्जन्म क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्या प्रमाण है, कैसे वो पुनर्जन्म काम करता है, इन सब चीजों पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।